अगर शौहर और वालदैन हिजाब न लेने दें तो क्या किया जाए? उन्हें कहिए कि आप हमारे साथ कब्र में चलेंगे और हमारे साथ अल्लाह के यहाँ खड़े होंगे और हमारी जगह पर आप जवाब देंगे, ठीक? और अगर हमको पकड़ होने लगी तो आप हमारी जगह पकड़े जाएंगे। आपको मालूम है ना वो रिवायत कि एक औरत अपने साथ चार मर्दों को जहन्नम में लेके जाएगी, बाप, शौहर, बेटा, भाई। क्या हम बाकी सारे काम इनकी मर्जी से करते हैं? नहीं। जिस दिन अपने अंदर जो हो ज़ौक़े यकीन पैदा, तो कट जाती हैं जंजीरें। जिस दिन आपके अंदर यकीन आ गया कि ये अल्लाह का हुक्म है और इसमें मेरी भलाई है, उस दिन सब जंजीरें कट जाएंगी। और जब तक ये नहीं आता तो आप अपनी जंजीर में खुद बंधे हुए हैं। जिस चीज को इंसान हकीकत में करने का इरादा कर ले, वहां कोई मुश्किल मुश्किल नहीं। और जो काम आप करना ना चाहें वो कर सकते भी हो तो कुछ नहीं करते। बहुत सी खवातीन मुझे बताते हैं, हमको ये डर था पता नहीं हमारे हस्बैंड क्या कहेंगे, और हमने किया तो उन्होंने तो कुछ भी नहीं कहा। खुद साख्ता खौफ है जो शैतान हमारे दिलों में डालता है। ऐसे देवर जो बच्चे से थे और हमारे साथ रह रहे हों, उनके जवान होने पर उनके साथ क्या मामला होगा? क्या उनको बच्चों या भाइयों की तरह लिया जा सकता है? अपने बच्चे भी अगर बड़े हो जाएं, और अपने बच्चे अगर बच्चे हैं तो भी जब आप सतर की हालत में नहीं या जीनत की हालत में हैं, तो वो भी इजाजत लेकर आए, और जब वो बड़े हो जाएं, ये देखिए ये वहां से जवाब कुरान ने आपको दिया है, वइजा बलगल अतफालु मिनकुमुल हुलुमा फलयस्तअज़िनु कमस्तअज़नल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयाती वल्लाहु अलीमुन हकीम। एक बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि भाई सिर्फ वो भाई होता है जिसको माने जाना हो या बाप की तरफ से, या फिर रजाई भाई जिसने साथ दूध पिया हो। बस हमारे माशरे में जो मुंह बोले भाइयों की किस्में हैं, कोई भाई नहीं है। किसी से भी हाथ तोड़ने की जरूरत नहीं है, वरना खुद को मुसीबत में डालेंगे। हाँ, अखलाकी तौर पर आप किसी दुकानदार से कुछ ले रहे हैं तो आप उसको भाई कह के पुकार सकते हैं, भाई ये बात ऐसे नहीं ऐसे, ताकि एक अच्छी फीलिंग आए। क्योंकि किसी को भाई कह देना इस तरह, उसमें एक बावकार और एक एहतराम और एक पाकीजा बात हो जाती है। लेकिन भाई कहना और भाई समझना और भाई समझ कर फिर मजीद हदें अल्लाह की तोड़ते चले जाना, इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। तो देवर को भाई कह सकते हैं आप? वो भाई नहीं है, वो देवर है। क्या देवर के अलावा जेठ से भी पर्दा है? क्या वो किसी और नस्ल से ताल्लुक रखता है? अब आप कहते हैं कि मैं सवालों के जवाब न दिया करूं, हैं? अगर देवर या बहनोई हाथ मिलाएं तो क्या करें? वही करें जो किसी भी गैर मर्द से हाथ मिलाते हुए करना चाहिए। आपको मैंने शायद पहले बताया कि मैं जब पहले दिन अपनी पीएचडी के लिए गई, तो मेरे सुपरवाइजर जो था, उसने, सबकी आदत है और बहुत सी मुसलमान लड़कियों से मिलाते हैं हाथ, तो वो अपने ऑफिस में था। जो ही मैंने दरवाज़ा खोला तो उसने खुद उठ के दरवाज़ा खोला, सामने आ गया और हाथ आगे किया। मैंने उसी वक्त सॉरी कर लिया। पता था कि अगर मैं आज ना नहीं करूंगी तो फिर कभी नहीं कर सकती। क्यों? इसलिए कि वो तो इसी को कोट करेगा, पहले दिन तो तुमने कर लिया था, अब तुम ना कर। फिर एक और मौका आया, उस दिन वो बहुत एक्साइटेड था, उसको फिर भूल गया, मैं फिर आगे हाथ बढ़ा दिया। और इतना वो एक लाइवली सा मौका था, एन उस मौके पर फिर मैंने सॉरी किया। अगर हमारे यहाँ का कोई उस्ताद होता तो इसको अपनी अना का मसला बना के अपने दिल में ग्रज रख लेता और फेल करके ही भेजता है। और जब फिर मेरी डिग्री लेने का वक्त था, फिर उस वक्त मैंने कुछ रिक्वेस्ट की कि मैं अपने पूरे हिजाब में होंगी, क्योंकि बस एक ड्रेस होता है। मैंने कहा मैं उस हिजाब के ऊपर वो ड्रेस पहन लूंगी। देखो मुझे तो कोई डर नहीं लगा। जिस वक्त मुझे डिग्री मिल रही थी, 1200 लोग तकरीबन मौजूद थे हॉल में, क्योंकि 400 ग्रेजुएट्स थे, उसमें चंद एक पीएचडी थे, बाकी कुछ अंडर ग्रेजुएट्स और कुछ ग्रेजुएट्स, और उसमें उनके कुछ रिश्तेदार थे। पूरा हॉल भरा हुआ था, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा था कि इन सब से बड़ी एक ज़ात है और वो मेरे अल्लाह की ज़ात है। मुझे इन निगाहों का कोई खौफ नहीं, मुझे सिर्फ उसकी निगाह का खौफ है। और मेरे लिए सब आसान हो गया, कुछ भी मुश्किल नहीं था। एक लम्हे के लिए ना खौफ दिल में गया, ना कोई वहशत आई, ना कोई शर्मिंदगी आई, ना कुछ और आई। इसलिए कि वो बड़ा है, ये बड़े नहीं है। जब तक हम लोगों को बड़ा मानेंगे, हम किसी चीज़ पे अमल नहीं कर सकते, कोई काम नहीं कर सकते। सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस अल्लाह की ज़ात देती है। ये किसी ने लिखा है कि बरतानिया की औरतें अपने बनाव सिंगार पर 2 करोड़ पाउंड सालाना और अमरीकी औरतें 12.5 करोड़ पाउंड सालाना खर्च करती हैं। ये चंद फिगर्स हैं। और एक रिपोर्ट में है कि 90% औरतें किसी न किसी तरीके के मेकअप की खूगर हैं। मेरी एक स्टूडेंट है, मैं पिछले दिनों जब अमेरिका में गई तो उनकी बहन एक कंपनी में काम करती है जो मेकअप की कंपनी है। उसने बहुत सारे लतीफे बताए कि किस किस तरह लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है, क्योंकि वो अंदर का शख्स है। उसने कहा कि सबसे ज्यादा जो बिजनेस तेजी से आगे बढ़ता है वो यही है, और हर रोज एक नई चीज ईजाद करते हैं और उसके ऐसे ऐसे फजाइल बयान करते हैं कि लोग ट्रायल के लिए ही ले जाते हैं और फिर गिरफ्तार हो जाते हैं। हालांकि बाज़ चीज़ें इंतहाई मामूली होती हैं लेकिन बहुत एक्सपेंसिव बिकती हैं। बाज़ औक़ात लोग स्कार्फ तो लेते हैं लेकिन बहुत बारीक कपड़े पहनते हैं, स्कार्फ भी बहुत बारीक होता है, इसका क्या हुक्म है? इसका हुक्म वही है कि जैसे हदीस में आता है ना, जिसके रूह से ये पता चलता है कि जो सिफत बयान की गई है हिजाब वाले कपड़े की, कि ना शफाफ हो ना वसाफ हो। शफाफ कहते हैं सी थ्रू को, वसाफ कहते हैं टाइट, जो हर चीज़ का वस्फ बयान कर दे। तो ये दो चीजें नहीं होनी चाहिए। सतर किससे छुपता है? जो चीज ढक ले, और दूसरा ये कि टाइट ना हो। डस हुमर हिन्ना इंक्लूड कलरफुल दुपट्टा? नहीं, इसलिए कि जो चीज जीनत में आ जाए उसको लेके बाहर मत जाएं। उसमें कलरफुल कढ़ाइयां, इस तरह की कोई भी चीजें, झालरें, ऐसी लेसेस के जो दूर से मुतवज्जे कर दें आपकी तरफ सबको, इन तमाम, क्योंकि जीनत में ये चीजें शामिल हो जाती हैं ना। किस लिए लगाते हैं आप लेस, कढ़ाई किस लिए करते हैं? मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दें, खूबसूरती के लिए करते हैं या बदसूरती के लिए करते हैं? तो खूबसूरती को तो छुपाने का हुक्म है। काश गाउन या हिजाब वगैरह को ब्यूटीफाई किया जा सकता, लेस, रिबन, मोती, कढ़ाई, आप बताएं। बात यह है कि अच्छा, जब भी कभी मैं किसी पब्लिक गैदरिंग में होती हूँ ना, लोग मुझसे हिजाब का सवाल करते हैं, मैं उनको जवाब ये इतनी लंबी चौड़ी बातें नहीं बताती। मैं उनको एक बात कहती हूँ कि हिजाब का मतलब है जीनत छुपाना, खूबसूरती छुपाना। कुरान में दो दफा आया है वला युबदीन ज़ीनतहुन्ना, जीनत जाहिर ना करो। ठीक, अब जाहिर होना और करना में फिर फर्क है। होना में तो कुछ चीजें हैं जो मजबूरी है आपकी, उसमें एक बच्ची ने बहुत तफसील से वो सारी बातें, इन पॉइंट्स लिख दिए थे कि क्या क्या चीजें, जैसे कद है, चाल है, गुफ्तगू है, आपके हाथ है या मेहंदी है या सुरमा है। अब ये तो माजहरा मिनहा में आ गई, लेकिन करना क्या है कि आप बैठ के घंटों लेस लगाएं और ऊपर मोती लगाएं और सजाएं और उसके ऊपर शीशे लगाएं कि आप जरा धूप में चलें तो दूर दूर तक लश्कारे हों। तो ये चीजें जाहिर करना में आ जाती हैं, ठीक है ना? तो जो चीजें जाहिर करने में हैं वो दुरुस्त नहीं है। आप भी जब अपने आप को कोई बात पूछनी, जो इतने ढेर सवाल थे ना, इतना मैंने रात रद्दी की टोकरी को फेंके, उन सब में बात यह है कि बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? दो चीजें समझने की है। एक ये कि जाहिर करनी नहीं, जो हो जाए सो हो जाए, और हो जाने में करने में फर्क है। हिजाब पहना जाता है जीनत छुपाने के लिए, अगर उसको आप फिर ब्यूटीफाई करना शुरू कर दें तो आपने क्या छुपाया? फिर तकल्लुफ क्या है, पहनने की क्या जरूरत है? वो जो अंदर है वही ठीक है। और दूसरी बात यह है कि जो रिश्तेदार, वो जो तकसीम की थी ना महरम और नामहरम की, उसको समझ लें और फिर उसके बाद अहकाम की सख्ती और शिद्दत और नरमी जो है खुद ही समझ आ जाएगी। मुस्तकिल महरम नसब, जैसे बाप, बेटे, भाई, भतीजे, भांजे, मामू, चचा, सगे, सुतेले, सब इसमें शामिल है। ससुराल, जैसे शोहर, शोहर के बेटे और ससुर। रजात, रजात से हर वो रिश्ता हराम है जो नसब से हराम है, ससुराल से नहीं, नसब से। फिर महरम में मुस्तकिल महरम तो ये थे, वक्ती महरम जैसे बहनोई, खालू, फूफा, ये जो हैं ये वक्ती तौर पर महरम हो जाते हैं, लेकिन इनके साथ वो सारी आज़ादी नहीं जो हकीकी महरम के साथ है। एक वक्ती तौर पर अगर हकीकी महरम में से कोई ना हो तो बिल्कुल नामहरम की बजाय इन वक्ती महरम से फ़ायदा उठाया जा सकता है ज़रूरत के तहत किसी भी मदद लेने के लिए। फिर गैर महरम है, उसमें रिश्तेदार गैर महरम है और अजनबी गैर महरम है। रिश्तेदार गैर महरम में ससुराल या नसब के हवाले से, मसलन ससुराल में देवर, जेठ वगैरह, उनके कजन, शोहर के मामू, चचा, ये सब, और नसब के जो हैं अपने जैसे फर्स्ट कजन हैं या और इसी तरह बरादरी के लोग जो हैं वो सब उसमें आ जाते हैं। अजनबी गैर महरम मुस्तकिल और वक्ती और रिश्तेदार गैर महरम के अलावा हर शख्स अजनबी गैर महरम है, ठीक है? और मुस्तकिल गैर महरम है उनको सिवाय शादी के महरम नहीं किया जा सकता, या रजात के महरम नहीं किया जा सकता। रजात और शादी दो चीजें हैं कि जिसकी साथ तो आप उनको महरम कर सकते। अब जब पर्दे की बात आती है तो जो बिल्कुल मुस्तकिल ना महरम है उनके सामने तो आप मुकम्मल तौर पर एक फॉर्मल ड्रेस में और फॉर्मल वे में जाएंगे, लेकिन जो ना महरम है मगर रिश्तेदार है, जिसमें कुछ बड़े आ जाते हैं आपसे, कुछ छोटे आ जाते हैं आपकी उम्र से, ठीक है, बहुत सारे लोगों ने ये सवाल लिखा हुआ है, जो हमसे बड़े हैं हमारे कजन और उनकी शादियां होगी। कुछ ने लिखा है जो हमसे छोटे थे और हमने उनको पाला और हमसे छोटे हैं। तो भाई ये फिर अपने हम उम्र तो बहुत ही थोड़े रह जाएंगे है? तो इसलिए बड़े हों या छोटे हों या हम उम्र हों, कोई भी हो, तो वो घर में आते हैं, रिश्तेदार हैं, किसी शादी में आएंगे, कहीं आएंगे। ऐसी सूरत में जब आप यंग हैं, शादी नहीं हुई, तो आपको बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत है। लेकिन अगर शादी हो चुकी है और मेकअप आपने नहीं किया हुआ या बहुत ऐसा लिबास नहीं पहना हुआ, तो घर के नॉर्मल ड्रेस में एक सादा चादर के साथ आप उनके साथ बात सलाम दुआ करके खाना रख सकते हैं, ज़रूरत की बात कर सकते हैं और उस ये कि एक नॉर्मल अंदाज में आप उनके साथ मामला कर सकते हैं। यहाँ इतनी सख्त पाबंदी नहीं होगी जितनी वहाँ पर बाहर होगी। तो जो उम्र रसीदा हो, ठीक है, उम्र रसीदा हो कज़न आपके, या आप उम्र रसीदा हो चुके हैं और फर्स्ट कज़न हैं, तो अगर ना पर्दा करें तो कोई हर्ज नहीं है। यानी उस तरह का जो आप फॉर्मल एक बाजार में किसी से कर रहे हैं, उसमें आप गाउन और स्कार्फ और वो सारी चीज़ें ना भी करें तो कोई नहीं। एक चादर ली हो, बाल नंगे ना हो, गला ना नंगा हो, जेवरात इस तरह के, ये सीना नंगा ना हो, बस सिर्फ ये कि हाथ या चेहरे की हद तक बगैर मेकअप के अगर आप उनके सामने आ गए हैं तो कोई क़यामत नहीं टूट पड़ी। तो ये अगर आपको बात समझ में आ गई तो बहुत सारे आपके सवाल जो हैं इसी के अंदर आ जाते हैं। लड़कियां बची रहें तो क्रिस्टल से ज़्यादा कीमती, वेस्टर्न एक सेइंग मुझे याद आ रही है, किसी बच्ची ने लिखी है, बहुत मशहूर है वहाँ पर, कि बुरी लड़कियां वो होती हैं जिनसे लड़के महज दिल लगी करते हैं और अच्छी लड़कियां वो होती हैं जिनसे वो शादी करते हैं। इस तरह वो लड़कियां खुद को ज़्यादा बावकार और महफूज तसव्वुर करती हैं जो लड़कों की गैर महज़्ज़ब हरकतों से खुद को दूर रखती हैं। शादी की तवक्को पर जो लड़कियां लड़कों को खेल खेलने का मौका देती हैं वो हमेशा परेशान होती हैं। इसके बरक्स जो लड़कियां अपना इज्जत वक़ार संभाले रखती हैं और वो उस मुतल्लिका लड़के से शादी न होने पर महफूज तो रहती हैं और उससे शादी होने की सूरत में उनके शौहर के दिल में उनके किरदार की पुख्तगी की वजह से इज्जत और एहतराम बढ़ जाता है, जो ज़िंदगी को और खूबसूरत बना देता है और ये उनके सब्र का, सेल्फ कंट्रोल का सिला होता है। ये वाकई एक हकीकत है कि एक इंसान खुद को जब हदूद के अंदर रहता है तो कभी शर्मिंदा नहीं होता। जो हदूद तोड़ता है वो वक्ती तौर पर तो इंजॉय करता है लेकिन बिल आखिर शर्मिंदगी उसका मुकद्दर होती है, और अगर वो बात दूसरों के सामने खुल जाए तो रसवाई का सबब बनती है। तो एक छोटी सी खुशी और इंजॉयमेंट के लिए इंसान हराम का इर्तिकाब करके बसाओ का सारी ज़िंदगी के लिए नफ्सियाती मरीज बन जाता है। जो लोग हिजाब पर तनकीद करते हैं उनका कहना है कि कुरान की मुतल्लका आयात की तफसीर कल्चर के हिसाब से की गई है। हर एक को ये देखना है कि उसके कल्चर के लिहाज से क्या चीज़ मारूफ है। इससे पता चलता है कि सर ढकना कल्चर है, ख़ासतौर पर एशिया में। इस बुनियाद पर तो बहुत सी मुस्लिम खवातीन हिजाब को तर्क कर रही हैं। अब आप देखिए कि मैंने किस कल्चर के एतबार से तफसीर की है। किसी कल्चर का मैंने जिक्र नहीं किया, मैंने तो जो लफ्ज़ कुरान में इस्तेमाल हुआ है उसका जिक्र किया है। और वो लफ्ज़ क्या है, आयत निकाल लीजिए ताकि आप दोबारा देख लीजिए, इसमें अगर क्वेश्चन आए तो आप जवाब दे सकिए। अब देखिए कि वकुल लिल मुमिनात यगदुदन मिन अबसारिहिन्न वयहफज़न फुरूजहुन्न वला युब्दीन ज़ीनतहुन्न इल्ला मा ज़हर मिन्हा वलियद्रिबन बिखुमरहिन्न अला जुयूबिहिन्न। खुमर किसकी जमा है, खिमार की। खिमार किसको कहते हैं, सर के कपड़े को, दुपट्टे को, चाहे आप उसको दुपट्टा बोलें, स्कार्फ बोलें, कुछ बोलें, कोई भी चीज़, लेकिन खिमार। अच्छा एक और बात यह है कि कल्चर वल्चर कोई चीज़ नहीं है। किसी भी आयत का जब आप तशरीह करते हैं तो सबसे पहले उसको अरबी कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे कि वहाँ ये लफ्ज़ किस माने में इस्तेमाल होता है। हज़रत उमर का एक कॉल है, इज़ा उल्बिसा अलैकुम शैउम मिनल कुरआन फल्तमिसूहु फिश्शर, जब कुरान की कोई बात समझने में तुमको इल्तिबास यानी शुबा पड़ जाए, मिक्सअप हो जाए चीज़, तो उसकी वजाहत कहाँ से देखो, शेर अरब में। अरब शायरी जो थी उसमें क्या था, अरब शायरी उसमें अल्फाज को बहुत बारीक तरीके से बयान किया गया है। अरबी का एक मशहूर मिसरा है, इन शायरा दीवानुल अरब, इन शायरा दीवानुल अरब, माना क्या है कि शेर अरबों का दीवान है। दीवान का मतलब उनका रिकॉर्ड है, उनकी हिस्ट्री है। अरबी की तफसीरें आप पिछली कदीम कई सौ साल पुरानी देखें तो उसमें जब अल्फाज की वजाहत होती है तो शेरों पर शेर लिखे होते हैं। तफसीर कुर्तुबी देख लीजिए, तो जो कुर्तुबी की तफसीर है अगर आप उसको पढ़ें तो आप देखेंगे कि वो एक वर्ड लाते हैं, वर्ड की एक्सप्लेनेशन शेरों से करते हैं। کہ فلاں شاعر نے اس لفظ کو یوں استعمال کیا، فلاں نے یوں اور یوں، اور اس کا معنی یہ بنتا ہے. اب دیکھیے کہ میں بھی جب آپ کو یہ کراتی ہوں تو شعر تو میں نہیں لاتی، اس لیے کہ آپ نے عربی شاعری پڑھی نہیں ہے، لیکن روٹس میں جا کے بات کرتے ہیں کہ اس لفظ کا روٹ کیا ہے. اسی لیے اس کا ترجمہ میں نے اوڑھنی کی تھی. اوڑھنی، اوڑھنی کا مطلب کیا تھا؟ اوپر اوڑھنے والی چیز. اس کا تو میں نے ترجمہ دوپٹے نہیں کیا، آپ کو یاد ہوگا میں نے کوئی کلچر کا لفظ نہیں یہاں بولا. اوڑھنی ٹھیک ہے، آپ کے بہت ثقیل اردو میں شاید اوڑھنی دوپٹے کے لیے استعمال ہو، لیکن اوڑھنی کا لفظی معنی کیا ہے؟ اوڑھی جانے والی چیز، چاہے وہ کوئی بھی ہو، اسے آپ برقع کہیں، اسکارف کہیں، دوپٹہ کہیں، چادر کہیں، جس سے چھپایا جائے. تو خمار عربوں کے ہاں، عرب عورتوں کا اگر آپ دور جاہلیت کی عرب عورتوں کا کلچر دیکھیں تو وہ کیا کرتی تھی کہ سر کا جو لباس ہوتا تھا اس کو یہاں سے پہن کر، یعنی سر ڈھانک کر، یعنی اس میں تصور ہی نہیں کہ سر کھول دیں، کیونکہ سر ڈھانکتے، خمار لفظ ہی سر ڈھانکنے والے کپڑے کا ہے. اس کو ڈھانک کر پھر کیا کرتی، پیچھے باندھ دیتی تھی. اور گردن اور زیور اور سینہ، یہ سب چونکہ عورت کے جسم میں سب سے زیادہ خوبصورت چیز، یہ اس کا سامنے کا حصہ ہے، تو وہ اسی کو ایکسپوز کرتی تھی. اور آج بھی آپ دیکھیں کہ خواتین اپنی خوبصورتی کے لیے اسی فرنٹ پورشن کو ظاہر کرتی. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ یہ جو اوڑھنے والی چیزیں ہیں اس کو سر پہ چیتڑا نہ رکھو، بلکہ کیا کرو، اس کو لمبا کرو اور اسے سینے تک لے آؤ. اس کی لینتھ کتنی ہو، یہاں دراصل وہ لینتھ بتائی جا رہی ہے کہ ایٹ لیسٹ اوپر والے ڈریس کی لینتھ کتنی ہو، ورنہ قمیض تو پہنا ہی ہوتا تھا، پھر تو اس کے بھی اوڑھنے کی کیا ضرورت ہے. تو وہ لینتھ بتائی تھی، کیونکہ آج بھی کئی لڑکیاں جیسے اسکارف لیتی ہیں تو بسا اوقات اسی اسکارف کا ایک پلو لے کے منہ پہ لے لیتی ہیں، وہ منہ تو ڈھکا ہوا ہے اور نیچے سے سب سینہ کھلا ہوا ہے. یہ بھی درست طریقہ نہیں ہے. یعنی ایک پلو اٹھایا اور اسی سے منہ ڈھانک لیا اور وہ کیا ہوا، چلتی جا رہی ہے اور سینہ سب نمایاں ہو رہا ہے، یہ درست نہیں ہے. اس میں اسکارف کی لینتھ ایٹ لیسٹ اتنی ہو، یا دوپٹے یا چادر، جو بھی آپ اس کو بول رہے ہیں لفظ، کہ وہ اس ایریے کو. اچھا، جب خمار اوپر سے آئے گا تو گردن بیچ میں آ جائے گی. اچھا، اب بھی میں نے دیکھا کئی لوگ کیپس پہن لیتے ہیں، یعنی کئی کلچرز میں کیا کرتے ہیں، وہ لپیٹ کے بال بیچ میں کیے، کیپ ڈالی، کان بھی ننگے ہیں. جیسے سعودی ایئر لائن کے جو ایئر ہوسٹس وغیرہ کا آپ ڈریس اگر دیکھیں تو وہ بعض وقت یہاں سے تھوڑا سا گراتی ہے، لیکن گردن آگے سے ننگی ہو رہی ہوتی ہے. گردن بھی زینت میں ہے اور اس کو ڈھانپنا ہے. جیب جو ہے، گربان، گربان یہ سارا حصہ ہے اگلا. ولا یبدین زینتہن، اور اپنی خوبصورتی، زینت ظاہر نہ کریں، یعنی پہلے تو ڈھک لیں. ڈھک کے بھی کیا نہ ظاہر کریں اپنی زینت، الا لبعولتہن او آبائہن او آبائے بعولتہن، اور یہ سارے آگے رشتے. اب کسی کو بھی آپ نے پرکھنا ہو کہ اس کے سامنے جائیں گے نا، کیونکہ بعض سوال ہے شوہر کے دوستوں کے سامنے کیا کرنا چاہیے، تو آپ دیکھ لیجئے یہاں شوہر کے دوستوں کا اگر کوئی ذکر ہے تو ان کے سامنے زینت کھول لیں، اور اگر ذکر نہیں ہے تو ڈھانپے. چھٹی کے بعد گاڑی تک جاتے ہوئے راستے میں بازار میں آنے والی عورتوں کے نیم مریاں کپڑے اور بے نیازی سے بازار میں جانا دیکھ کر بہت دل دکھتا ہے. کئی دفعہ دل چاہتا ہے انہیں کہوں کہ میری بہن، اللہ نے عورت کو پردے میں رہنے کا حکم دیا، اپنا جسم ڈھانپ کر بازار میں آؤ. ہمت نہیں پڑتی کہ برا مانے گی. اپنی ہی کلاس کی کچھ خواتین کو باریک لباس سے منع کیا تو برا مان گئیں. مشورہ دیں کہ کیا کریں، ان کو کیا کہنا چاہیے. یہ میرے ساتھ بھی یہ تجربہ کئی دفعہ ہوا ہے، اور میں خود اس بات سے بہت تکلیف محسوس کرتی ہوں، کیونکہ کسی عورت کا ننگا ہونا ایسا ہی لگتا ہے خود ہو رہے ہیں، تو بہت مجھے وحشت ہوتی ہے. اس دفعہ جب میں جا رہی تھی اسلام آباد اسی ویکینڈ پہ، تو میرے قریب ہی دو خواتین تھیں جو جن کے جسم بھی کافی بھاری تھے، کیونکہ جسم جب بھاری زیادہ ہوتا ہے تو فگر زیادہ اور نمایاں ہو جاتے ہیں، زیادہ مشکل ہوتی. ان کسی طرح شارٹ ڈریس، ہاف سلیوز اور ٹائٹ ڈریس اور دوپٹے سے بے نیاز، بے نیاز سے مرادی کہ اگر ہے بھی تو کبھی ادھر گر رہا کبھی ادھر گر رہا. سوچتی رہی کیا کروں. اللہ تعالیٰ نے دل میں ایک بات ڈالی کہ کیوں نہ چھوٹے سے کارڈ چھپوائے جائیں، بس دو ورقہ، اور اس میں صرف سورت نور کی یہ آیت، ایک طرف عربی میں اور ایک طرف ترجمہ ود ریفرنس، بس ایک پیغام آپ کے نام، نتھنگ ایلس. تو یہ چھپوانے والی ہیں انشاءاللہ تعالی. تو جس کے بارے میں بھی آپ سمجھیں کہ آپ اس کو منہ سے بول کے کچھ نہیں کہہ سکتے، تو آسان طریقے سے اس کو کارڈ دے دیجیے، بہت خلوص کا میسج اس پر لکھ کر کہ آپ اس کو برا نہ مانیے. اور پھر وہ حدیث بھی تو یاد آنی چاہیے نا، کہ بخاری اور مسلم دونوں کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے دو گروہ ایسے ہیں جن کو میں نے نہیں دیکھا، کیونکہ آپ کے دور میں پھر یہ چیز رہی نہیں تھی، کہ آپ کی امت کی کوئی عورت ہو اور پھر وہ بے حجاب ہو، یا پھر وہ ستر سے بے نیاز ہو، یا وہ زینت کی نمائش کرے، امپاسبل. فرمایا لیکن وہ دونوں ہی جہنم میں جانے والے ہیں. ایک تو مردوں کے بارے میں کہ جن کے ہاتھ میں گائے کی دموں کی طرح کوڑے ہوں گے، ظالم حکمران جو ہر ایک پہ برسائیں گے بغیر کسی تمیز کے، اور دوسرے وہ عورتیں کاسیاتن، عاریاتن، مائلاتن، ممیلاتن. کاسیات کسوا کہتے ہیں کپڑے کو، لباس پہنے ہوئے. عاریاتن ننگی، کپڑے پہن کر بھی ننگی نظر آئیں گی. مائلاتن مردوں پہ مائل ہوں گی، ان کے جال میں گرفتار ہوں گی. ممیلاتن ان کو اپنی طرف اٹریکٹ کریں گی. لا يدخلن الجنت، یہ جنت میں داخل نہ ہوں گی. ولا يجدن ریحها، اس کی خوشبو نہ پائیں گی. یہ جنت میں داخل نہ ہوں گی، جنت کی خوشبو نہ پائیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو دور دور تک پھیل رہی ہوگی. ایسی عورتیں جنت کی خوشبو سے بھی محروم ہو جائیں گی. تو اگر وہ اس خیر سے کوئی محروم ہونا چاہتا ہے تو وہ، آپ اس کا کیا کر سکتے ہیں؟ آپ کا کام تو صرف بتانا ہے. اگر کسی کو اللہ نے دل نہیں دیا محسوس کرنے والا تو اس کی اپنی مرضی. لستا علیہم بمسیطر، آپ کا کام ہے صرف پہنچانا. آپ ڈنڈے کے زور پہ کسی کو نہیں ڈھانک سکتے، اور جتنا بگاڑ معاشرے میں آ چکا ہے اس کو پلٹتے وقت لگے گا. اس کے بارے میں کسی نے کمنٹ بھی لکھ کے دیا تھا، ولا یبدین زینتہن. ہمارے جاننے والوں میں دو پاکستانی لڑکیاں فردر اسٹڈیز کے لیے امریکہ گئیں. وہاں جا کر ایک لڑکی نے تو جیسا دیس ویسا بھیس پر عمل کیا اور یونیورسٹی میں بہت پسند کی جانے لگی. دوسری لڑکی نے اپنی اسلامی اور قومی روایات کو برقرار رکھا، جس پر اسے اپنی سہیلی اور دوسرے پاکستانیوں سے خوب تنقید کا سامنا کرنا پڑا. یونیورسٹی میں کوئی پارٹی کا موقع آیا تو پہلی والی لڑکی نے دوسری سے کہا کہ پلیز اب تم کل وہاں اماں بھی بن کر نہ آ جانا، اور مجھے تو سمجھ نہیں آتا کہ تم یہاں کیوں اس طرح دوپٹہ اوڑھے رکھتی ہو. دوسری لڑکی نے کہا پہلے تم بتاؤ کہ تم اس طرح کیوں ڈریس اپ ہوتی ہو. تو پہلی لڑکی نے کہا تاکہ میں اچھی لگوں، سمارٹ لگوں. دوسری نے کہا کس کو؟ پہلی کہنے لگی سب کو، خود کو. دوسری نے کہا تو سنو، میں تو خود کو اتنا کم مایا اور سستا نہیں سمجھتی کہ ہر ایک کے لیے سجتی پھروں. میں ضرور اچھا لگنا چاہتی ہوں مگر چند مخصوص لوگوں کے لیے، ہر ایک کے لیے نہیں. پہلی لڑکی بولی کہ ہاں یہ ہے ایک پوائنٹ جو سوچنے کے لائق ہے. اور اس طرح اس لڑکی نے بغیر تقریر کیے مختصر سی بات میں اسلام میں زینت کو چھپانے کے تصور کا ایک رخ پیش کر دیا. جب ہم اپنی نمائش کرتے ہیں، کبھی سوچا ہم نے کس کے لیے کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ ہم خوبصورت نظر آنا چاہتے ہیں نامحرم مردوں کے لیے، کیوں کیوں؟ ریزن کیا ہے؟ یہ سمپل ریزن نہیں کہ سارا معاشرہ ایسے ہے، یہ ریزن نہیں ہے ایک مسلمان عورت کے لیے. اللہ نے تو قرآن اس لیے اتارا لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا، ساری دنیا کو خبردار کرے برے انجام سے. کہاں یہ کہ ہم خود ویسے ہو جائیں اور ویسے ہی بنے پھرتے رہیں؟ آخر مشکل کیا ہے؟ کیا مشکل ہے؟ کہیں مشکل نہیں، مشکل اپنے اندر ہے. یہاں ہے مشکل، دل میں. جس دن یہ ٹھیک ہو گیا نا، اِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّ، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. آپ دیکھیے کہ عورت ہونے کے ناطے یہ فرض ہے، سورت انزلناها وفرضناها، اور فرض کی پوچھ ہوگی، حساب ہوگا. اور جن لوگوں کو ہم خوش کرتے کرتے ہیں نا، ان میں سے ایک ہمارے ساتھ نہیں ہوگا جب ہم سے اکیلے میں پوچھا جائے گا. ایک سوال جو کئی بار لوگوں نے پوچھا، جو شاید سب سے زیادہ پوچھا گیا ہوگا، وہ یہ ہے کہ میں نے قسم کھا کر فلاں لڑکی کو بہن بنایا تھا، اب شادی کرنا چاہتا ہوں، کیا کر سکتا ہوں؟ اس قسم کا کفارہ کیا ہوگا؟ کیونکہ بہن کہنا تو بہانہ ہے آگے بڑھنے کا، کیونکہ اگر کچھ اور کہوں گا تو پھر ابتدا میں تو آگے نہیں بڑھ سکتا. اور حقیقت یہ کہ شروع میں تو سب بھائی ہی بنتے ہیں، پھر رشتے تبدیل ہو جاتے ہیں. کیا لڑکی کو بغیر حجاب کے نہیں سر پہ دوپٹہ اور بال کھولے اور کوئی دوسرا شخص واقعی نکاح اور شادی کا خواہش مند ہو، دوسرے خاندان کے سامنے اس کو دیکھ سکتا ہے؟ اگر وہ اصرار کرے کہ لڑکی کو بغیر حجاب دیکھے تو کیا اس کی اجازت ہوگی؟ جی ہاں، اس کے بارے میں علماء کے درمیان اختلاف ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسی کوئی واضح حدیث نہیں ملتی کہ جس میں ایک حد مقرر کی گئی ہو کہ شادی کا خواہش مند اس اور اس حصے تک دیکھ سکے. لیکن جو حدیث آتی ہے وہ یہ کہ دیکھنے میں کیا اٹریکشن ہے، अट्रैक्शन की चीजें फिर जो है वो चेहरा बाल और बगैर हिजाब के ही लड़की हो सकती है। तो उसमें फिर यह है कि उसमें भी एक हद के अंदर रहना चाहिए, लेकिन मेकअप वगैरह नहीं करना चाहिए क्योंकि असलियत में नजर आना ही बेहतर है, धोखे में नहीं। ये मैं जो सुनाती हूँ तो किसी ने मुझे क्वेश्चन लिखकर भेजा कि ये जो आप लोगों के किस्से सुनाती हैं तो क्या तशी अल्फाहिशा में नहीं आ जाता। ये मैं वहां से करना चाहती हूँ ताकि आपके जहन में भी हो सकता है, किसी और के जहन में ख्याल हो, खुद मेरे अपने जहन में भी आया था कि कहीं इसमें तो नहीं आ रहा। आप देखिए कि इबरत के लिए जो वाक्या सुनाया जाता है जिसमें किसी इंसान का नहीं मालूम कि ये फला इंसान है, इसका वाक्या या उसका वाक्या, तो उस वक्त तक वो तशी अल्फाहिशा में नहीं आता। और फिर तशी अल्फाहिशा में इसलिए भी नहीं आता कि उसकी कोई बिल्कुल माइन्यूट डिटेल्स नहीं बताई जा रही, सिर्फ चंद एक मोटे मोटे बातें अगर ना भी बताई जाए सबको पता चल जाती है, उस हद तक बात होती। इसकी एक मिसाल है सूरत यूसुफ। सूरत यूसुफ में कुरान पाक में आपने पढ़ा है कि जुलैखा ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कमरे में बंद किया, फिर उसके बाद क्या कहा, ही तलक काला माज़ल्लाह। ये सारा कुरान किस्सा खोल के सुना रहे हैं ना, ये तशी अल्फाहिशा नहीं है, इबरत के लिए, तालीम के लिए, सबक के लिए। तो इबरत के लिए अगर कोई वाक्या इस तरह का बता दिया जैसे मैंने अभी बताया तो तशी अल्फाहिशा में नहीं आता, ठीक है। जैसे तालीम के लिए अगर आपको किसी डेड बॉडी को डिसेक्ट करना पड़े या डॉक्टर को इलाज के लिए कुछ देखना पड़े, तो ये इस वक्त भी जो बातें हो रही हैं ना, ये भी एक रूहानी इलाज है माशरे का। तो उसमें हौलनाक अंजाम कुछ दिखा दिए जाएं तो उससे इबरत होती है। तो इसलिए जिसका सवाल जिसने लिखा और बहुत अच्छा किया, मैं अप्रिशिएट करती हूँ उस बच्ची को जिसने मुझे लिख के भेजा, कि ऐसी कोई कन्फ्यूजन जहन में हो तो उसको वाजे कर लेना चाहिए। कि किसी ने लिखा है कि पर्दा ना करने के कुछ एक्सक्यूजेस। नंबर एक, लोग क्या कहेंगे, शादियों और पार्टियों में जाऊंगी तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे कि मुल्लानी आ गई है, मासी आ गई है। नंबर दो, मेरे खानदान वाले लोग और घर वाले क्या कहेंगे, मेरी कजन्स तो हर फैशन में आगे हैं, वो मेरा मजाक उड़ाएंगी, सारे खानदान में कोई भी नहीं करता, मैं क्यों करूं। नंबर तीन, मेरी दोस्तें क्या कहेंगी, वो कहती हैं अभी तो बनाओ सिंघार के दिन है, तुम्हारी इतनी अच्छी शक्ल है, इतने खूबसूरत बाल हैं, इन्हें छुपा दोगी, हालांकि अल्लाह ने खूबसूरत चीज़ें दूसरों को दिखाने के लिए बनाई हैं। यूनिवर्सिटी में तुम इस तरह माइयों की तरह घूमो फिरोगी, लोग तुम्हें बैकवर्ड कहेंगे। नंबर चार, अगर पर्दा कर लिया तो अच्छे घरों से रिश्ते नहीं आएंगे, मेरी जितनी दोस्तों की शादियां हुई हैं वो बहुत फैशनेबल हैं, आजकल के लड़कों को भी ज़्यादा मॉडर्न लड़कियां चाहिए। नंबर पाँच, मुझे बहुत गर्मी लगती है, मेरा दम घुटता है। नंबर छः, मेरी क्या गलती है, ये तो मेरे वालदैन का कसूर है, उन्होंने पहले क्यों नहीं बताया कि पर्दा करना चाहिए, अब मैं क्यों करूँ। नंबर सात, पर्दा पुराने वक्त की ज़रूरत थी, ये तो पेंडू लोग करते थे, पढ़े लिखे लोगों में से तो कोई भी पर्दा नहीं करता। ये सब एक्सक्यूजेस सिर्फ शैतान का वसवसा है। अगर हमने दुनिया का काम करना हो तो लोगों की, घर वालों की, दोस्तों की मुखालफत की कोई परवाह नहीं होती, क्योंकि उस वक्त मुस्तकबिल को सिक्योर करना होता है। लेकिन बात जब अल्लाह के हुक्म पर अमल की होती है तो हर तरह की तावीलें याद आ जाती हैं। ये कोई लिखती है कि पर्दे की आयात पढ़कर ऐसा लगा जैसे अल्लाह ने मुझे हर शर से महफूज बना गा दी हो। आज से पहले मैं पर्दे की हिकमत न समझ सकी। मैं समझती थी कि ये औरत पर एक बोझ है, एक नाजुक सी जान पर जुल्म है, लेकिन मैं न जानती थी कि अल्लाह को एक औरत कितनी अजीज है, कि मैंने इसे जो हुस्न दिया है उसको ज़माना गर्द आलूद न कर दे, इसे छुपा के महफूज कर दिया। अगर हमारे पास एक डायमंड आ जाए तो हम उसे सात पर्दों में छुपा के रखते हैं कि इसका चार्म ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह अल्लाह ने औरत को सरेआम लाकर बेवकूफ़ नहीं किया कि इसकी कद्र कीमत कम न हो जाए। अल्लाह ताला जिस तरह खुद पोशीदा है उसी तरह उसने अपनी बंदियों में ये सिफत लाना चाहिए। लेकिन आज की औरत ने समझा कि शायद ये उसके साथ ज्यादती है कि उसे एक कार्टून बनाकर रख दिया जाए। यूँ वो गलियों बाजारों में स्क्रीन पर हर जगह अपनी नुमाइश करती फिर रही है। क्या वो ये समझती है कि अपनी इस खुद नुमाई से वो बहुत आज़ाद ख्याल मॉडर्न और लोगों के दिलों में घर कर लेगी? नहीं, बल्कि इस तरह तो इस नादान ने अपनी कदर खो दी। काश वो जान लेती कि वो तो एक कीमती हीरा थी, ना कि रास्ते में पड़ा पत्थर कि जिसे हर कोई टोकर मार कर गुजरता चला जाए। ये किसी ने सूरत नूर पर एक नज़म लिखी है। तुम एक लड़की हो, एक मुसलमान लड़की हो, एक पाकीज़ा हयादार लड़की हो, अपने दिल को हथेली पे लिए न फिरो, अपने ख्वाबों को दरीचों में बंद करो, खुद पे जब्त नफ्स की दीवारें लगाओ, अपने गर्द खुदी का जाल बनाओ, देखो खामोश कदम आने वालों को रोक लो, तुम कोई शय नहीं कि हर एक के लिए खड़ी हो, यूं सजी यूं सवरी घर से निकली हो, क्यों लचक इतनी दी कि कोई आगे बढ़े, क्या अपनी किस्मत पे तुम्हें एतबार न था, کیا خدا کی ذات پہ تمہیں بھروسہ نہ تھا؟ جان لو پاک مردوں کے لیے پاک عورتیں ہیں اور ناپاک مردوں کے لیے ناپاک عورتیں ہیں، سو تم خود کو پاکیزہ رکھنا، اس غرض سے خود کو بچا بچا کے رکھنا، تم آج کے شاعروں کے شعروں میں نہ ڈھلو یوں کہ دل ہتیلی پہ ہی لیے پھرو، خود کو افسانہ نگاروں کے افسانوں میں نہ ڈھونڈو، تم اپنی ذات کی خود سے تعمیر کرو، تم مریم بھی ہو، فاطمہ بھی ہو، عائشہ بھی ہو، دیکھو خود کو دنیا کے آگے مثال بناؤ، اس مرد کے معاشرے میں جب بھی نکلو گی خود کو بڑا ہی بے بس پاؤ گی، یہاں نکل کر اپنی ذات الجھا نہ دینا، سنو تم صرف اپنے کام سے کام رکھنا، ہاں پڑھنے کو نکلی ہو تو پڑھائی تمہاری منزل ہے، یوں ڈھانپ لو خود کو کہ گندی نظروں سے بچ جاؤ، تمہیں اپنانے کو، دوستی بڑھانے کو کئی ہاتھ بڑھیں گے، تم دھیرے سے اپنا راستہ ہی بدل لو، مرد تمہیں خود سے ہمیشہ نیچا رکھتا ہے، تم یوں ہی اس پر بحث نہ کرو، اس کے پاس بڑائی کے لیے کیا ہے، شاید کہ طاقت میں تم سے بڑا ہو، لیکن اگر ایک لڑکی کے لیے، ایک بہن، ایک بیٹی کے لیے اس کی نظریں پاکیزہ نہیں ہیں، خود پہ ضبط نفس نہیں ہے، دل میں تیرا احترام نہیں ہے، تو وہ تم سے ہرگز بڑا نہیں ہے، وہ یقیناً بہت چھوٹا ہے، وہ بڑا ہوتا ہے جب وہ ایک لڑکی، ایک بہن، ایک بیٹی کی عزت کا محافظ ہوتا ہے، آج ایسی پاکیزہ نظروں کا محافظ نہیں ملتا، شاید اس لڑکی نے خود کو بے پردہ کر دیا ہے، لیکن یہ تو چند با پردہ کی بھی عزت نہیں کرتے، شاید وہ حسن کو کھلا دیکھنا چاہتے ہیں، نہیں ہرگز نہیں، ابھی لڑکیاں اتنی ارزاں نہیں ہوئیں، ابھی انہیں ماں باپ کی عزتوں کا پاس ہے، وہ ہر ایک کے لیے سجی سمری نہیں پھرتی، وہ کسی غیر سے چھپی دوستی نہیں رکھتی، وہ چھپ کے ماں باپ سے کسی انجانے پہ اعتبار نہیں کرتی، وہ کسی غیر سے عہد و پیمان نہیں باندھتی، اور خود کو کسی کے حوالے نہیں کرتی، وہ اپنی عزتوں کی آپ محافظ ہیں، ہاں وہی مریم، وہی فاطمہ، وہی عائشہ ہیں، یہ پاکیزہ ہیں، حیادار ہیں، کیونکہ وہ ایک مسلمان لڑکی ہیں، کیونکہ وہ ایک لڑکی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی دو چیزیں عورتوں کے لیے پسند کی ہیں، ایک اپنا حجاب اور دوسرا تخلیق، عورت تخلیق کرتی ہے، ماں بنتی ہے، اور اسی طرح حجاب میں رہنا۔ والقواعد، اور بیٹھ رہنے والیاں، من النساء، عورتوں میں سے جو بیٹھ چکی ہوں، یا بیٹھی ہوئی عورتیں، اس سے مراد ہینڈی کیپ نہیں ہے کہ ان کی ٹانگیں جواب دے گئی ہیں تو اب وہ باہر نہیں جاتی اور گھر بیٹھ گئی ہیں، یا بیٹھ کے نماز پڑھنا شروع ہو گئی ہیں، اس سے مراد وہ عورتیں ہیں جو اپنی جوانی کی عمر سے گزر چکی ہیں، جس میں وہ اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں رہی، ان کے نفسانی خواہشات اور جذبات ختم ہو گئے ہیں، ان کے اندر سے کشش ختم ہو گئی ہے، نہ وہ کسی سے شادی کی خواہش رکھتی ہیں، نہ کوئی اور ان سے شادی کی خواہش رکھتا ہے، یعنی نہ کوئی مرد ان سے شادی کرنا چاہے، نہ وہ کسی سے کرنا چاہے۔ یہاں پر صرف لفظ بوڑھی کافی نہیں، یہاں بھی کسی خاص عمر کی بات نہیں، کیونکہ انڈیویجولز پہ ڈپینڈ کرتا ہے، اگر آپ یہاں صرف یہ چیز بھی رکھیں کہ مینوپاز شروع ہو جائے، پیریڈز ختم ہو جائیں، تو آپ سمجھیں کہ ہم اس میں شامل ہو گئے، نہیں، بعض خواتین کے پیریڈز کے ختم ہونے کا وقت بہت ارلی ایج میں ہو جائے، 30s میں ہو جاتا ہے، لیکن ان کے اندر سٹل کشش موجود ہوتی، اولاد پیدا نہیں کر سکتی، لیکن اس کے باوجود ان کی رغبت مردوں کی طرف ہو سکتی ہے، یا مردوں کی ان کی طرف ہو سکتی ہے۔ تو بنیادی طور پر جو کرائیٹیریا مقرر کیا جائے گا وہ کیا ہے، کہ نہ ان کے اندر اب شادی کی خواہش ہے، اور نہ کسی کے اندر ان سے نکاح کی خواہش ہے، یعنی بالکل گئی گزری، جن کے جذبات ختم ہو گئے۔ ایسی عورتوں کے لیے کیا حکم ہے؟ اللاتی لا یرجون نکاحن، کیونکہ شرط کیا ہے، لا یرجون نکاحن، جو امید نہیں رکھتی نکاح کی، فلیس علیہن جناحن، تو نہیں ہے ان پر کوئی گناہ، ان یدعن، کہ وہ رکھ دیں، اتار دیں، پیچھے بھی کیا پڑا تھا، اتار کر رکھ دینا، ہین تدعون، اور یہاں بھی یدعن، رکھ دیں، اتار رکھیں، सियाबहुन्ना अपने कपड़े, ये मुराद है पर्दे के कपड़े। सौब कहते हैं कपड़े को, यानी जो आमतौर पर ऊपर चादर वगैरह ली जाती है उसकी तरफ इशारा है, बड़ी चादर जिसको जिलबाब भी कहा गया, ऊपर वाला लिबास। अदा आना कि वो उतार दें, सियाबहुन्ना अपने कपड़े, कौन से कपड़े, जो जीनत छुपाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, क्योंकि आगे आ रहा है गैर मुतबर्रिजातिन बिजीना, कि वो कपड़े उतार कर भी जीनत का इजहार मकसूद ना हो, नुमाइश मकसूद ना हो जिस्म की। फलैस अलैहिन्न जुनाहुन अन यदअना सियाबहुन्ना गैर मुतबर्रिजातिन बिजीना, यानी अगर बूढ़ी होने के बावजूद वो समझे कि उनमें अट्रैक्शन है, वो तो नहीं किसी से शादी करना चाहती, लेकिन दूसरे मर्द अभी भी उनको ऐसी नज़र से देख सकते हैं, क्योंकि बाज़ इंडिविजुअल्स बूढ़े होने तक बहुत अट्रैक्टिव होते हैं। तो वो फिर हर इंसान को खुद क्राइटेरिया दिया गया कि खुद देखो। और फिर चादर भी अगर बड़ी हटानी है तो भी उसमें बोझ उतारना मकसूद है एक बूढ़ी औरत से, ना कि जीनत की नुमाइश मकसूद है। गैर मुतबर्रिजातिन बिजीना, बास खवातीन इंतहाई बूढ़ा होने के बावजूद मेकअप नहीं छोड़ सकती, वो बाल भी डाई करती हैं, वो अपने बाकी सारे इवन प्लास्टिक सर्जरी के जरिए दोबारा बहुत यंग नजर आती हैं। तो ऐसी खवातीन के लिए फिर क्या है, इजाजत नहीं। गैर मुतबर्रिजातिन बिजीना, जीनत की नुमाइश करने वालियां न हो। वो अस्ताफिफ ना, और ये के पाक दामनी इख्तियार करें, यानी सतर पोशी करती रहें, खैरुल्लहुन्ना, यही उनके हक में बेहतर है। तो फिर इजाजत काहे की रही, कौन सी इजाजत की बात है। तो मुराद ये है कि बाज़ुकत ऐसी बीमारी हो जाती है, बाज़ुकत अकल चल जाती है, मरीजा हो जाती है, या उसको खुद अपना होश नहीं, तो उसको कहाँ तक दूसरे लोग समेटते फिरेंगे, लपेटते फिरेंगे। तो इसलिए सहूलत रखी गई।